आज स्त्रियों के लिए कुछ बातें बताने का विचार है। स्त्रियों के लिए सबसे अच्छी बात है कि सबसे अच्छा बर्ताव करना चाहिए। सुहागिन स्त्रियों के लिए पति की सेवा सर्वोच्च सेवा है और पति के माता पिता की सेवा तो और भी ज्यादा उत्तम है। पति कैसा ही गरीब हो, अंधा हो, कैसा भी हो, उसकी सेवा करना स्त्री का कर्तव्य है। अंध बधिर क्रोधी अति दीना, वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, ऐसे ही पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। तुलसीदास जी की ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। अंधा हो, बैरा हो, क्रोधी हो, बहुत गरीब हो, बूढ़ा हो, रोगी हो, मूर्ख हो, चिड़चिड़ा हो, धनहीन हो, ऐसे पति का भी यदि कोई अपमान करता है तो वो स्त्री नरक में जाकर नाना प्रकार का दुख पाती है। स्त्रियां जो श्रृंगार करती हैं वो पति के लिए की करती हैं। यदि पति श्रृंगार आदि को वस्तु लाकर देता है, आपको वस्त्र वगैरह अच्छे वस्त्र लाकर देता है, तो तुम्हारा कर्तव्य उस पति की प्रसन्नता के लिए ही श्रृंगार धारण करना है। पति की दृष्टि से ही पहनना उत्तम है। जिनकी दृष्टि कपड़ा, गहना, गोटा, किनारी में है कि मेरे कपड़े की किनारी कैसी है, गोटा कैसा है, अच्छा है ना, ऐसी जिस स्त्री की वृत्ति रहती है वो महामूर्ख है। इन चीजों में क्या पड़ा है, जैसा कपड़ा हो पहन लिया। ध्यान ईश्वर की ओर देना चाहिए और अपने द्वारा किसी भी प्रकार पति को तकलीफ न हो इस बात पर विचार करना चाहिए। स्त्री को चाहिए कभी गुस्सा न करे, कभी रूसे नहीं, न कभी कड़वे वचन बोले और न ही पति के सामने आंख दिखाकर बोले। पातिव्रत्य धर्म से सब बातें सिद्ध होती है। जैसे भगवान को राजी रखने में खुश रहा जाता है, उसी तरह पति की राजी में स्त्री को राजी रहना चाहिए, यही उत्तम बात है। एक स्त्री पति की सेवा करती थी, उन्हीं की राजी में वो राजी रहती थी, पति जो कुछ कहता वही करती थी। पति ने पूछा क्या बना है, उसने कहा दाल भात बना है। पति ने कहा फुलका बना दो, तो फुलका बना दिए। खिचड़ी बनाओ, तो खिचड़ी बना दी। भोजन के समय में जब भोजन करने बैठी तब थाली में धूल डाल दी। वो तब पति हंसा तो वो भी हंसी। तब पति पूछा क्यों हंसी तुम, उसने कहा आप पहचानो। पति ने कहा थाली में धूल डालने से मैं तो हंसा। तो उसने कहा कि मैं भी इसीलिए हंसी कि तुम्हारी हंसी में ही तो मेरी हंसी है। ऐसे पति की राजी में राजी रहना चाहिए। पर थाली में धूल नहीं डालनी चाहिए। पति के मन के अनुकूल कार्य करना चाहिए। इसी प्रकार लड़के का कर्तव्य अपने माँ बाप के अनुकूल कार्य करने चाहिए। प्रतिकूल नहीं चलना चाहिए, प्रतिकूल चलने से उसके अवगुण नष्ट हो जाते। माँ बाप के अनुकूल रहने से बड़ा लाभ होता है। जो स्त्री पति के अनुकूल रहती है, जो पुत्र माता पिता के अनुकूल रहता है, उसका अंतःकरण एकदम पवित्र और शुद्ध हो जाता है और उन्हें बहुत जल्दी भगवान की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि उनके मन में कोई इच्छा नहीं है। वो तो अपने माँ बाप की इच्छा में इच्छा मिलाता है और स्त्री अपने पति की इच्छा में इच्छा मिलाती है, तो उसकी इच्छा तो नष्ट हो गई, वो महात्मा हो गई। जैसे महात्मा की कोई इच्छा नहीं रहती, उसी तरह स्त्री की भी कोई इच्छा नहीं रहनी चाहिए। पति की इच्छा में अपनी इच्छा समझो। पति की इच्छा तीर्थ जाने की है तो उसकी इच्छा भी पति के इच्छा अनुसार ही होनी चाहिए कि आपकी इच्छा है तो चलूंगी। कभी कभी बड़ा संकट आता है, पति की इच्छा तीर्थ जाने की है और पत्नी कहती है कि आप तीर्थ की बात बोलते हो लेकिन आपकी माताजी बहुत बीमार हैं, इसलिए आपको तीर्थ में नहीं जाना चाहिए, माँ की सेवा में रहना चाहिए। फिर भी यदि आप जाते हैं तो मैं तो आपके साथ कैसे चल सकती हूँ, माताजी को इस अवस्था में नहीं छोड़ सकती। ऐसी बात नहीं माने, उसमें स्त्री का कल्याण है। पति को भी ऐसे समय में तीर्थ यात्रा की बात नहीं सोचनी चाहिए, क्योंकि घर में माता पिता की सेवा सबसे बड़ा तीर्थ स्नान है। गंगा स्नान बाद में है, पहले माँ बाप की सेवा है, तीर्थ है। तीर्थ ऐसी आज्ञा का यदि स्त्री पालन नहीं करती है तो पति को प्रसन्नता होती है। कोई इच्छा न रखे, इच्छा ही सभी दोषों का कारण है। क्रोध है, ये इच्छा के कारण से ही बढ़ता है। स्वागिनी स्त्रियों के लिए पति भक्ति कल्याण मार्ग के लिए सबसे बड़ा सुगम साधन है। पति का नित्य प्रति दर्शन करती है तो उसकी सेवा करना कितना पुण्य का काम है। ईश्वर तो प्रत्यक्ष दर्शन देने में देरी कर सकते हैं, पति तो साक्षात ईश्वर के रूप में ही है। इनके दर्शन करके, ईश्वर की भावना करके सेवा करो, कितनी ऊंची बात है। सावित्री कैसी पतिव्रता स्त्री थी, द्रौपदी है, सीता है, पार्वती है, ये कितनी पतिव्रताएं हुई हैं, इनसे हमें सीखना चाहिए। गांधारी से सीखना चाहिए। जो सुख पति को नहीं मिला, वह सुख गांधारी ने अपने आंख से कभी नहीं लिया। अपने पति को बार बार टोकती भी थी, लेकिन पातिव्रत्य धर्म में उनका नाम एक नंबर में आता है। पांडवों के साथ दुर्व्यवहार करने स्त्री को ये स्वभाव बनाना चाहिए कि मैं पति की आज्ञा में ही चलूंगी। ऐसी स्त्री दिखने में स्त्री हो सकती है पर वो महात्मा स्त्री है। स्त्रियां चाहती हैं कि हमको शांति मिले, हमारी ममता हटे, हमारे राग द्वेष मिटे, तो इससे अच्छा क्या उपाय हो सकता है। जैसे महात्मा राग द्वेष से रहित है, उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं है, इसी प्रकार स्त्री को रहना चाहिए। मान बड़ाई कहाँ रहेगी, क्योंकि वो पति का आदर करती है, आदर करने वाला आदर की चाहना नहीं करता, इसलिए उन्होंने पति की पूर्ण सेवा की, कल्याण हो गया। जितने महात्मा हैं उनको याद किस लिए करते हैं कि उनमें क्या क्या गुण थे, उन गुणों का स्मरण होता है, गुणों का स्मरण करने से वो गुण अपने में आते हैं और फिर उन गुणों के अनुसार अपने को बर्ताव करना चाहिए। जैसे आप रामचंद्र जी के मंदिर में गए तो भगवान के दर्शन करते हुए उनके अपार गुणों का ख्याल करो और फिर विचार करो कि हमें रामचंद्र जी के समान पिता के सामने बर्ताव करना है। वनवास देने वाली केकई माता के साथ राम जी ने जैसा बर्ताव किया, ऐसे हमें हमसे प्रतिकूल चलने वालों के साथ बर्ताव करना है। भाई के साथ कितना उत्तम बर्ताव रामचंद्र जी का रहा, कोई भाई रामचंद्र जी से नाराज नहीं रहता था, रामचंद्र जी किसी से नाराज नहीं रहते थे। भरत और रामचंद्र जी के प्रेम के अंदर त्याग की प्रधानता थी। भरत जी यदि राजगद्दी पर बैठ करके रामचंद्र जी से मिलने जाते तो आज भरत जी का इतना आदर नहीं होता। राजगद्दी को ठुकराया और राम जी को अपनाया तो राम जी के हृदय में भरत का स्थान कितना ऊंचा हो गया। भाई भाई का बर्ताव ऐसे होना चाहिए। भगवान की पूजा करो, मानसिक पूजा करो, घर में पूजा करो, तो उनके अवतार की मर्यादाओं को और उनके व्यवहार को भी याद कर अपने अंदर वैसा लाने का प्रयत्न करो। स्त्री को चाहिए कि वे पति के साथ ही मंदिर जाए, सत्संग में जाए, तीर्थों में जाए, अकेली न जाए। यदि पति न जाना चाहें और मना करें तो स्त्री को प्रेम पूर्वक रहना चाहिए और पति आज्ञा दे दे तो अड़ोस पड़ोस सब बहनों माताओं के साथ जाए, अकेला तो कभी न जाए। विधवा स्त्रियों को बड़े वैराग्य धारण करने की आवश्यकता है, क्योंकि स्त्रियों के अंदर वैराग्य की शिक्षा देने वाली वही है। संसार नाम की कोई वस्तु तो है नहीं, भोजन को दवा के समान खाना चाहिए। ध्यान से सुने, भोजन को दवा के समान लेना चाहिए। जैसे दवा, दवा माने दवाई, जैसे दवा स्वाद के लिए नहीं खाई जाती है, ऐसे भोजन स्वाद के लिए नहीं खाना चाहिए। स्वाद बुद्धि के खाने से बुद्धि में विकार आते हैं। जमीन पर या लकड़ी का पाटा हो उसके ऊपर सोना चाहिए, कंबल बिछाकर सोना चाहिए। विधवाओं को ज्यादा से ज्यादा समय भजन ध्यान में लगाना चाहिए। सभी लोगों की सेवा करें, किसी को किसी तरह की तकलीफ न दे। संसार में अच्छा कार्य करके जाए, मरने के बाद सब लोग उसको बधाई देंगे, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर ही तो बस जिनके मन माही ताको कछ दुर्लभ जग नाही। सत्संग का समय थोड़ा रहा है, सब बातें याद करनी चाहिए। जब बातें व्यवहार में आती हैं तब बातें भूली नहीं जाती, ध्यान से सुना। जो बातें हमारे आचरण में आ जाती हैं वो बातें भूली नहीं जाती। जैसे जो रुपया हमारे जेब के अंदर आ गया है उस रुपये का खतरा नहीं है, और जो रुपया अभी बाहर हाथों में ही रहता है तो उसके छीनने का गिरने का कहीं डर रहता है, और जेब के अंदर सुरक्षित रह दिया वो रुपया नहीं जाता है। इसी प्रकार जो बातें हमारे आचरण में आ जाती हैं वो बातें याद ही हो गई, याद से भी बढ़कर हैं। अपने घर में जाओ तो अपने व्यवहार को बदलो, ताकि घरवाले भी सोचें कि देखो सत्संग में जाने से इस आदमी में कितना असर पड़ा है। जैसे तीर्थों से आकर लोग प्रसाद बांटते हैं, उसी प्रकार से अपने घर में अपना अच्छे व्यवहार का प्रसाद बांटो, सबकी सेवा करो, उपकार करो। यदि सेवा न कर सको, उपकार नहीं कर सको, तो कम से कम किसी को दुख तो मत दो। कोई भी ओला छाना काम मत करो। कोई भी चीज चाहिए अपने पति से मांगो, बीच वाले से मत मांगो। पति से छिपा करके कोई दान पुण्य मत करो। हमारी माताएं बहनें बहुत भोली है, वो सोचती हैं कि गुप्त दान होगा, ये गुप्त दान नहीं है, ये चोरी है। जैसे थर्ड क्लास का टिकट लिया और बैठ गए फर्स्ट क्लास में या सेकंड क्लास में, तो टीटी आकर बेइज्जती करता है कि तुमको शर्म नहीं आती है थर्ड क्लास के टिकट लेकर सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास में बैठने की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। इसी प्रकार से पैसा पति का है और दान पुण्य का लाभ आप लेना चाहती हो और गुप्त दान का फल लेना चाहती हो, उससे तो आपको डांट मिलेगी। एक तो आपकी बेइज्जती हुई, दूसरा आपका मन मलिन हो गया, क्या लाभ हुआ। ये चोरी है, इससे इस लोक में परलोक में तकलीफ होगी। कई माताएं बहनें घर में चुपचाप पैसा निकाल लेती हैं और निकाल करके कहती हैं कि हम तो अच्छे काम में पैसा लगाते हैं, तुमको क्या अधिकार। चुपचाप पैसा लेकर अच्छे काम में लगाने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं, इसलिए भयंकर चोरी है। चोरी का कार्य कभी नहीं करना चाहिए। अपने को जरूरत क्या है, दान करने वाले वो जाने। हाँ, यदि पति कह दें ये तुम्हारे को पैसा देते हैं, आप अपनी इच्छा से मर्जी आए वैसे आप खर्च करो, तो ये पति की उदारता है, पर आपको पति से छिपाकर फिर भी नहीं देना चाहिए। आप कह रहे आप ही देव कि नहीं भाई तुम देव तो आप मेरे साथ रहो, तो साथ रख में दान देना चाहिए। जैसे आदमी बाहर की साफ सफाई का पूरा विचार करता है, ऐसे ही अंदर की सफाई का विचार करना चाहिए। समय बड़ा खराब आ रहा है आजकल, शौच जाने के बाद हाथ को साफ करने के लिए मिट्टी का प्रयोग कम करते हैं। मिट्टी का प्रयोग करना चाहिए, देखो कितनी पुरानी बात कह रहे हैं। 93 घर को साफ और पवित्र रखो, बालकों को रसोई की जगह मत बैठाओ, और यदि बालक ने पेशाब कर दिया तो तुरंत अपनी धोती बदल दो, नहीं तो बुद्धि अपवित्र हो जाएगी। अच्छा पैसा यानी ईमानदारी का पैसा हो, उससे भोजन बनाना चाहिए। वो अन्न खाने से बुद्धि ठीक रहती है। दुर्योधन का खराब पैसा खाने से भीष्म जी की बुद्धि खराब हो गई। भीष्म पितामह शांति पर्व में युधिष्ठिर को बड़ा उपदेश दे रहे थे, वहां द्रौपदी बीच में हंसी, भीष्म पितामह ने उपदेश बंद किया और द्रौपदी से पूछा कि बेटी हंसी क्यों तुम? क्योंकि तुम्हारी जैसी स्त्रियां अकारण हंसती नहीं, अकारण रोती नहीं। क्या बात है? द्रौपदी ने कहा, पितामह आपके अंदर इतना ज्ञान है, इतनी बात आप बोलते हो, कितनी गहरी मर्म की बात बोलते हो, पर भरी सभा के अंदर मेरी जिस समय में बेइज्जती की जा रही थी, उस समय आप चुप क्यों थे? वहां भी तो आपको ऐसा ही उपदेश देना चाहिए था। द्रौपदी की आंख में आंसू आ गए। पितामह भीष्म ने कहा, बेटी मैं जानता था कि तुम यही बात मुझसे कहोगी। बहुत अच्छा हुआ मरने से पहले तुमने मुझसे ये प्रश्न कर लिया। सारे संसार को ये मैं उत्तर दे रहा हूं कि दुर्योधन का खराब पैसा मैंने खाया है, उसका अन्न जैसा हुआ वैसा मेरी बुद्धि बनी। अब चूंकि अर्जुन के बाण मेरे शरीर में खूब लगे तो मेरा गंदा खून निकल गया, इसलिए मेरी बुद्धि स्थिर हो गई। यह तो भीष्म पितामह की बात है। अपने लोगों की देखी जाए तो कैसी बुद्धि है, विचार करो। न्याय से पैसा पैदा करो। पैसा पैदा करने के लिए थोड़े ही जीवन में आए हैं, केवल पैसा निर्वाह करने का साधन है बस। इसलिए सच्ची खरी कमाई का पैसा काम में लेना चाहिए। सभी को चाहिए घर एवं शरीर और मन तीनों को एकदम स्वच्छ रखो, सबसे प्रेम रखो, किसी से कोई इच्छा मत करो, अपने वाणी का संयम करो, प्रेम से बातचीत करो। कोई गुस्सा भी करे तो आप शांत रहो। गुस्सा करने वाला अंत में स्वयं ही पछताएगा, और यदि आपने भी गुस्सा कर लिया तो आपको बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। शांत रहो, प्रेम से रहो, अपना पति जो भी दे उसे प्रेम से स्वीकार करो, जैसा भी कपड़ा दे, जो भी वस्तु दे, अपनी तरफ से कोई मांग मत रखो। नारायण नारायण नारायण, इससे मिलता जुलता ही आ जा रहा है प्रवचन भीष्म पितामह का।
कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। सुख के सागर राम जी दुख के भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं बन भजिए बारंबार। परिब्रह्म सदगुरु परणम्य पुनि सब संत नमो, हरि रामा मुर भवन में या पद समान कोई। हरि रागुन गावले रे भैडा मारा जब लख सुखी रे शरीर, हरि रागुन गावलो रे भैडा मारा जब तक सुखी है शरीर। भाग भला जाने सतगुरु मिलिया पड़ियो समद में सी, भाग भला जाने सतगुरु मिलिया पड़ियो समद माई सिर। अंश होई चुगे ली विजय रे, हंस होई चुगे ली विजय रे, नाम अमोलख हीरे हरि रागुन गाए ले रे भैडा मारा जब तक सुखी है शरीर। बालपण ही भज लीजिए रे जय जना करी मारा वीर, बालपण ही भज लीजिए रे जय जना करी मारा वीर। फेर ना हंसो थारो आए सीरे, फेर ना हंसो थारो पाछे घणो पछ ताए सिरे भैया, पीछे घणो पछ ताए सी थारे। पिंजरे में व्यापे पीड़ हरि रघुण गावे ले रे भैड़ा जब तक सुखी है शरीर। राम गुण गावलो रे भैडा मारा जब लख सुखी है शरीर। अवसर बीतो जावे दिनो दिन जो अंजलि को नीर। अवसर बीतो जावे दिनो दिन जो अंजलि को नीर। फेरनी हंसो थारो आए सीरे, फेरनी हंसो थारो आए सीरे, मान सरोवर तीर हरीरा गुण गाव ले रे। भैड़ा जब लख सुखी है शरीर, राम गुण गाव लो रे। भैड़ा मारा जब तक सुखी है शरीर, सब देवारो देवरा हम जी, सब पीरन को पीर आ। सब देवारो देवरा मैयो, सब पीरा को पीर। सजरा हम भज लीजे भैया, सजरा हम भज लीजे। अरे है सुखरी सीर, अरे है सुखरी सीर, हरिरा गुण गाव ले रे। भाईड़ा जब तक सुखी रे शरीर, राम भजन गुण गाव लो रे। भाईड़ा मारा जब लख सुखी है शरीर, जबलक सुखी है शरीर।